أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے اب ہم چلیں گے آیت نمبر 8 اور 9، جو اصل میں اس پوری آیت کا جو تھیم ہے اس سے متعلق ہے. تو میں پہلی آیت کو تھوڑا سا وضاحت کر کے اگلی آیت پہ جاؤں گی، اور پھر ہم دونوں کو اکٹھا لے کر اینڈ پہ سمجھیں گے. سورۃ صف آیت نمبر 8، ٹاپک لکھیے اسلام دشمنوں کا ہدف اور اس میں ناکامی. لفظی ترجمہ دہرائیں گے آپ میرے ساتھ. یریدونا، وہ چاہتے ہیں، لیطفئو، کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، نور اللہ کا، بیفواہیہم، اپنے منہوں سے، واللہ، اور اللہ، متم، پورا کرنے والا ہے، نوری ہی، اپنے نور کو، ولو، اور اگرچہ، کریہ، ناپسند کریں، الکافرون، کافر. بمحاورہ ترجمہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اس طرح کی ایک آیت آپ نے پہلے کتنی دفعہ سنی ہے؟ 3 بار اللہ نے یہ اور اس سے اگلی آیت، یعنی اس کو قرآن پاک میں مختلف انداز سے بتایا. اصل میں یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو ہمیں اسلام دشمنوں کے ارادوں سے آگاہ کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ پورے شرع صدر کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، لیکن آپ کے ارد گرد جس دور میں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں مدینہ کے یہود تھے. اس سے پیچھے مکی صورتوں میں جب دیکھیں تو آپ کے سامنے مشرکین تھے. اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر اسلام کے خلاف جمع ہو گئے، جزیرۃ العرب تھا کل اور آج پوری دنیا کو اس میں ڈال لیجئے، سارے مذاہب، ساری قومیں، سارے کلچر والے اس بات پر متفق تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں. اسلام کسی کو اچھا نہیں لگتا، سیدھی سی باتیں لکھ کے رکھ لیں، اور اس کی بڑی آسان وجہ، کیونکہ اسلام میں غلامی ہے، سبمیشن ہے، سرنڈر ہونا. بچے کو بھی اپنی مرضی کرنا اچھا لگتا ہے. چھوٹا بچہ بھی ماں کے ساتھ کبھی ضد پہ آ جاتا ہے نا تو بھوکا رہ لے گا لیکن دودھ نہیں پیے گا. انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے خود پسند ہے، اپنے آپ کو خود بڑا دیکھنا چاہتا ہے، اور اسلام سارے ادیان سے مختلف اس لیے ہے، یہ دین لوگوں کو اللہ کا بناتا ہے. واحد مذہب ہے پوری دنیا میں جس کی بنیاد کسی شخصیت سے نہیں ہے اور کسی جگہ سے نہیں ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے عیسائی، عیسیٰ کے فالورز، کرسچینز، کرائسٹ کے ساتھ، یہودی، یہودا سے نسبت، بدھاز، بدھ مت جس کو کہتے ہیں وہ بدھا سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج مسلمانوں کے نام نہاد فرقے، سارے ہی بول لیجئے، یا کوئی جگہ ہے یا فرد ہے کوئی. اگر آپ اس کو کسی شہر سے جوڑ لیں، بریلی نام کا شہر ہے، دیوبند نام کا ایک شہر ہے، اور شخصیات کے ناموں پہ بھی آج لوگ موجود ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں لوگوں کو لفظ مسلم اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس کے بعد اپنی مرضی نہیں ہوتی. اللہ کا بن جائیں گے تو پھر اللہ کو اپنا بنانا بھی تو پڑے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو خبر دی، یریدون، کون ارادہ کرتے ہیں؟ جو آپ کے ارد گرد تھے، جو یہود مدینہ تھے، منافقین مدینہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے. ادھر مکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو مشرکین کے نام سے معروف ہیں، वो भी अपनी बातें किनके जरिए लेकर आते थे, लिखिएगा, मुनाफिकीन यहूद का माउथ पीस थे। मेरा आप तक रब्ता इस पूरे साउंड सिस्टम के ज़रिए है, वो स्पीकर्स भी हों, वो एम्पलीफायर भी हो, सब कुछ हो, सिर्फ ये गुम जाए जिसको आप माउथ पीस कहते हैं, तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी। तो लिखिए ज़रा, यहूद के दिलों में नबी सल्लम से बुग़्ज़ था, दुश्मनी भी थी इस्लाम से, और फ़िरकावारियत और ख़ानदानी तासुब भी था। अब वो ख़ुद तो नबी सल्लम के पास आ नहीं सकते थे, अना भी थी बीच में और कई बीच में और भी मामला थे, तो वो मुनाफिकीन को अपना माउथ पीस बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों की बातें इधर की उधर करवाते, जो कहना होता उनकी ज़ुबानों पर डाल देते, वो आकर महफिलों में पूछ लेते, बुरे वो बन जाते, मकासिद इनके हासिल हो जाते। तो याद रखिएगा, जो लोग मुसलमानों के बीच में उठता बैठता है लेकिन उसकी 100% हमदर्दियाँ मुसलमानों से नहीं होती, असल में वो दुश्मनों का पैरोकार होता है। वो कहते हैं ना कि गैरों के या दुश्मनों के बोलने से नहीं इतना नुकसान हुआ जितना अपनों के चुप रहने से नुकसान हुआ है। भरी महफिल में कोई भी दिल जला आपके बारे में चार बातें कर दे, लोग कहेंगे इसको, ये तो है ही उसका दुश्मन। लेकिन उस महफिल में आपकी दोस्त बैठी हो और चुप करके सुन के आ जाए, तो कहेंगे अच्छा इनकी दोस्त भी नहीं बोली, इसका मतलब कि इन बातों में कोई ना कोई बात होगी। तो क्या पता चला, यूरी दो ना, वो इरादा करते हैं। बल्कि साथ ही साथ वजाहत वाले पेजेस पे आते जाइए तो आपको कुछ चीज़ें इसकी साथ साथ दिखती जाएंगी। यूरीदून, वो इरादा करते हैं। कौन करते हैं? कल नबी सल्लम के इर्द गिर्द के दुश्मन करते थे, और आज के इस्लाम दुश्मन, और क़यामत तक जो भी लोग इस्लाम की कॉज़ को पसंद नहीं करते वो सब इरादा करेंगे। लफ्ज़ जो यूरीदून है ना, इरादा, रौद से है। आप कहते हैं करूँ कि ना करूँ, अच्छा सोच लूँ, ये जो रौद है ना ये ऐसे है, किसी चीज़ की तलब में बार बार आगे पीछे होना, डबल माइंडेड होना, पंजाबी में कहते हैं जको तक्का, ठीक है। रायद उस शख्स को कहते हैं जो किसी काफले में सबसे पहले भेज दिया जाता है ताकि पानी और चारा तलाश करे, ताकि वहाँ कोड़ाव डाला जा सके, ठीक है। राद अल इबिल, अरब लोग कहते हैं घास की तलाश में ऊँटों को इधर उधर लिए फिरना। और इसी तरह जो सुरमा डालते हैं ना आँख में, सुरमचू, या वो पीछे से उसका एक गोल सा होता है ना, उसको भी रॉयत कहते हैं। क्यों? आंख में डालते हैं ना, पूरी आंख में घुमा के एंड तक देखते हैं कि आपने डाल लिया कि नहीं डाला, उसके लिए भी यही लफ्ज़ आता है। तो लफ्ज़ इरादे को समझ रहे हैं, करूं कि ना करूं, डिसीजन। जब तक आप कोई फैसला कर नहीं लेते ना, आप बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो फिर इसमें तलब भी है, कोशिश भी है, आरजू भी है, ख्वाहिश भी है। दिल किसी तरफ खींच रहा है, कर लेती हूँ, फिर अकल कहती है नहीं रहने दो। तो ये जो इधर से उधर होना है उसको इरादा कहते हैं। अरबी ज़ुबान में इसके लिए एक और लफ्ज़ भी आता है, शाह, जैसे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, फमन शाह फल युमिन वमन शाह फल यकफुर वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो इरादे लफ्ज़ में और शाह लफ्ज़ में दो मुख्तलिफ मानी मिल गए आपको। तीसरा लफ्ज़ अरबी में इश्तहा, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम। अल्लाह कहते हैं दुनिया में अपनी मर्जी नाच करो, वहाँ अपनी करना, ये दुनिया रब चाही तो आखरत मन चाही। अल्लाह हमें दोनों जगह पे अल्लाह की रज़ा पे राज़ी कर दे, जो अल्लाह हमें दे दे हम उस पे राज़ी। एक और लफ्ज़ आता है चाहत के लिए, इब्तगा, तलाश, इल्लब्तिगा वजही रब्बिल आला, अपने रब की चाहत या उसकी रज़ा को पाने के लिए करते हैं। अगला लफ्ज़ है रगीबा, असा रब्बुना युबद्दिलना खैर मिनहा इन्ना इला रब्बिना रागिबून। उर्दू में हम बोलते हैं कि हमें इस चीज़ की रग़बत है, वो यही लफ्ज़ है। अगला लफ्ज़ है कि बगा, कालू या बना मा नबगी, हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने क्या कहा था अपने बाप को कि अब्बा हमें और क्या चाहिए, देखो ना हमारे पैसे भी मिल गए और हमें गल्ला भी आ गया, तो लिहाजा छोटे भाई को भी हमारे साथ भेज दे। फ़र्क देख लीजिए, पांच लफ्ज़ हैं लफ्ज़ इरादे के मानी में। शाह क्या होता है, आज आप इंशाल्लाह और माशाल्लाह को थोड़ा सा समझ लीजिए, ऐसी ख्वाहिश या इरादा जो अल्लाह की तकदीर के ताबे हो, और ये मुकर्रर वक्त से आगे पीछे नहीं हो सकता, इसीलिए तो हम कहते हैं इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह। अरादा आम लफ्ज़ है, ख्वाह मशीयत इलाही के ताबे हो या ना हो, इसका वक्त आगे पीछे हो सकता है, यानी हमारे इरादे बदलते रहते हैं ना। हज़रत अली कहा करते थे, मैंने इरादों के टूटने से रब को पहचाना है। इश्तहा कहते मरगूब चीज़ों की ख्वाहिश, लस्ट, लव, जिसके अंदर एक क्रेविंग की फीलिंग आए ना, तबई मेलानात की ख्वाहिश करना, जिसकी तरफ इंसान की तबीयत ललचाना कह लीजिए। और बगा किसी चीज़ को हासिल करने में एतदाल से आगे बढ़ जाना, इसी से लफ्ज़ बगावत भी है। और सूरह यूनुस में तो अल्लाह कहता है कि जो बागी होगा वो उसकी बगावत उसके अपने खिलाफ पड़ेगी। और रगबा या रगबत किसी चीज़ की महज चाहत, ख्वाह ये तबई मेलानात के मुताबिक हो या ना हो। क्या पता चला कि अल्लाह सुबहाना ताला इस आयत में अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो कुछ जालिमों की, पिछली आयत क्या थी, वह मन असलमो, यहाँ अल्लाह कुछ लोगों की ख्वाहिशों की बात करते हैं। और वो क्या है, ख्वाहिश के बातिल के तेज़ झोंकों से हक का नूर बुझा दें। जैसे सारे जहान के इंसानों की भूखों से सूरज की रोशनी को बुझाया नहीं जा सकता, इसी तरह इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जालिमों की साजिशों से इस्लाम की रोशनी बुझ नहीं सकती। और याद रखिएगा कि इस्लाम का चिराग 2 बिलियन मुसलमानों के दिल में रहता है, कभी भी ये नहीं मिटेगा, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। हमने अभी तक जितनी बात की है उसका खुलासा क्या है कि हक बात को, इस्लाम को, अल्लाह के किसी हुक्म को ठुकराना नहीं है। और अल्लाह की उतारी हुई किताब को अपनी मनगढ़ंत बातों से और अपनी मनपसंद चीज़ों से दबाना नहीं, और इस्लाम के इस नूर को जिसको सारे ही बुझाना चाहते हैं, हमने इसको फैलाने वाला बनना है। आगे चलिए फिर बात और होगी। ली युत्फियो, नया लफ्ज़ है आपके लिए, थोड़ी सी इस पर बात करेंगे हम। इत्फा से है, इत्फा, रोशनी को बुझा देना, मोमबत्ती को बुझा देना। अरब लोग कहते हैं तफियतिन नार, आग बुझा देना, फूक मारना, फूक मारा आग बुझ गई, इसके लिए इत्फा आता है, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि इसके लिए एक ख़ास इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह किसी ऐसे काम का इरादा करना जो रोशनी को बुझा दे, उसके लिए भी ये लफ्ज़ आता है। अब आप ज़रा सा नोट तो कीजिए, ये जो फूक मारना है या बुझाना है, इसके लिए अरबी में पता है कितने लफ्ज़ हैं? 4 लफ्ज़ हैं, लिख लीजिए। नफ़खा, फ़न फुहफी ही फ़याकून व तैरम बिस्मिल्लाह। ये जो नफ़खे सूर है ना, एक ब्लो होगा, ट्रम्प होगा उसके अंदर, जैसे भी मैं ज़रा ज़्यादा ऊंची बोलूँ ना तो आपके कानों में तकलीफ़ होगी, तो सूर एक बहुत ऊंची आवाज़ होगी। फिर इसी तरह नकरा, फैज़ा नुकीरा फिन नाकूर, नाकूर तो उर्दू में भी बोलते हैं ना, एक भोंपूसा होता है जिसमें आवाज़ ऊंची होती है। फिर नफसा, वमिन शर्रिन नफासाती फिलुकत, गांठों पे, गिरों पे पड़ पड़ कर फूकने वालियाँ। और अतफा जो यहाँ लफ्ज़ है, ताफा आई खमज़ा से, युरीदून अली युत्फियु नूरुल्लाही बिअफवाहिहिम, तो इस्लाम की बात की जा रही है। फ़र्क चारों का लिखिएगा, नफ़खा हो फूक मारना, आम इस्तेमाल है, कॉमन वर्ड है, बास के नज़दीक किसी के जिस्म में फूक मारने को नफ़खा कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फूक मारते थे ना तो मरीज़ ठीक हो जाता था। फिर नफ़सा थुतकारना, जैसे ये देखिए, ये जो है ना नफ़ासाती फ़िलुक़, ये जादू टूने में इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी झाड़ फूँक करने वाले का फूक मारना। कभी आपने सुना वो छू मंतर और फूके मारते हैं। और एक ऐसी बेहुदा वीडियो किसी के थ्रू मुझे मिली, पता नहीं कहाँ थे वो बुज़ुर्ग और लोग कहीं थे, और वो ऑनलाइन दम कर रहे थे उनको, और पानी की बोतलें थी, लोग पूरे भरे हुए भी थे, और वो चू 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 ऐसे माइक पे सबको दम कर रहे थे। देखी होगी आपने भी, जहालत है और क्या है ये, वो चीज़ है थुतकारना, फूके मारना। नकारा किसी बजने वाली या अंदर से खाली चीज़ में फूक मारना, जैसे खाली चीज़ में फूक मारे तो आवाज़ पलट के आती है ना अंदर, उसको नाकूर कहते हैं। और ये क्रिश्चियंस अपने गिरजों में नागौर रखा करते थे पहले, अब तो और चीज़ें हैं ना, घंटी जो वो बड़ी नागौर ही है। बल्कि जब नबी सल्लम को लेकर गई थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उस वाक़े में भी नागौर का तस्करा मिलता है। और इत्फा फूक मारकर चिराग गुल कर देना या आग बुझा देना, किसको बुझाना चाहते हैं? नूरा, रोशनी को। नूर और नार दो लफ्ज़ लिख लें अरबी के। नूर फैलने वाली रोशनी जो चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती है, ये दो किस्म की है, एक दुनियावी और एक उखरवी। फिर जो दुनियावी नूर है ना, वो फिर दो किस्म का है, एक वो जिसको हम अपनी आँख से देख सकते हैं और एक वो जिसको नहीं देख सकते। जिसको नहीं देख सकते उसको वही और कुरान की रोशनी में देखना होता है। जैसे जन्नत हमने नहीं देखी, जहन्नुम नहीं देखी, फरिश्ते नहीं देखे, तो हम मानते हैं कि ये मौजूद है, कुरान पढ़ेंगे हमें यकीन आ जाएगा। दूसरी वो जिनको देख सकते हैं, जैसे सूरज है, चांद है, सितारे, और आम तौर पे चीज़ों को देखना। कुरान की खूबी के अज्जाकु मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, कुरान की रोशनी में अंदर की चीज़ें दिखती हैं। मिसाल दो, एक्सरेस, और आज का सिटी स्कैन, और आज का MRI और अल्ट्रासाउंड। पेट में बच्चे के दिल की धड़कन तक देख लेते हैं, क्या कर रहे देख लेते हैं ना। इसी तरह से याद रखिएगा कि जब आपकी कुरान के साथ दोस्ती होती है ना, आपको शीशे में चीज़ें दिखती हैं। आप गैब नहीं जानते, लेकिन लोगों के दिल भी दिखते हैं आपको, लोगों का अंदाज़, उनकी टोन, उसकी एक एक चीज़ दिखती है। इसको फरासत कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि ये अल्लाह की बुरहान से देखता है। तो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए दो रोशनियों की ज़रूरत है, एक ये सूरज चांद और बल्ब ट्यूब और आंखें, और दूसरी अंदर की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। इसके बगैर जो जीते हैं उनके दिल मुर्दा है, अंदर से बंद है, इसीलिए उनको डिप्रेशन के मरीज़ कहा जाता है। और ये सारा मज़मून कुरान में बहुत प्यारा आता है। अफ़मन शरह अल्लाह सदरहू लिल इस्लाम फ़हु अला नूरे मिन रब्बिही। अल्लाह ताला हमें शरह सदर अता फरमा दे, दिलों को खोल दे हमारे। फिर देखिए फ़र्क थोड़ा सा, एक अरबी में लफ्ज़ नूर और नार, अनार, और एक दौ ज़िया का लफ्ज़ सुने ना, ज़ियाउल हक, ज़िया भी चमक को कहते हैं। इसी तरह से तजल्ला, जल्ला, तजल्ला, वहजा। इसी तरह से शरका, मशरिक, सूरज तुलू होना, असफरा वसुभी असफरा, वजू हुई यौमाइज़ मुसफिरा, शाइनी फेसेस, अबसरा मुबसिरा, व नहारा मुबसिरा का लफ्ज़ आता है। फ़र्क लिखिए, रोशनी के लिए अरबी में चार लफ्ज़, मुनीर, ऐसा रोशन जिसमें रोशनी और चमक तो हो मगर हरारत और सुर्खी ना हो, यानी ठंडी रोशनी कह लें। ये जो चांद है ना, उसकी रोशनी को क्या कहते हैं? नूर। और एक नार, सूरज की रोशनी नार है, हीटेड है, और चांद की रोशनी ठंडी है। इसी तरह ज़िया, ऐसी रोशनी जिसमें हरारत और सुर्खी भी हो, ये ख़ास लफ्ज़ है, यानी मुनीर आम लफ्ज़ है, ये ख़ास है। फिर नार, जब रोशनी का उनसर कम और हरारत और हिद्दत ज़्यादा हो, जैसे कि सूरज की रोशनी है। और जल्ला, किसी खूबसूरत चीज़ का रोशन और नमूदार होना। वहदा क्या है? ऐसी रोशनी जिसमें हरारत और भड़क और सुर्खी बहुत ज़्यादा हो। अशरका या इशराक, चाश्त के वक्त की रोशनी और वक्त। और असफरा, सुबह का तड़का, सुबह की रोशनी, नूर का तड़का, जब बिल्कुल सूरज निकलता है और चमक होती है, फ्रेश बिल्कुल रेज होती है ना, चेहरे की चमक रौनक के लिए भी आता है। और मुबसिरा, इतना रोशन जिसकी रोशनी में हर चीज़ आसानी से देखी जा सके। बस यही कह लीजिए कि अल्लाह हमें इस रोशनी के लिए वक्त लगाने वाला बना दे। तो नूर अल्लाह से भी यहाँ क्या मुराद है? युरीदून अली युत्फियु नूर अल्लाह, लिखिए, नूर अल्लाह से मुराद जहाँ इस्लाम है, कुरान की रोशनी, इस्लाम की रोशनी। दुश्मन क्या चाहते हैं? कि ये रोशनी ख़त्म हो जाए, कुरान ख़त्म हो जाए, इस्लाम ख़त्म हो जाए, और कुरान चेंज हो जाए। एडजस्टेबल कुरान चाहिए, फ्लैक्सिबल चाहिए, फिट टू ऑल चाहिए, टेलर मेड कुरान चाहिए। सूरह यूनुस में उनका मुतालबा है कि एती भी कुरान गैरी हाजा, इस कुरान के अलावा कोई और लाओ, नहीं तो फिर अव बद्दल हो, या इसको बदल दो। अल्लाह कहते मैं नहीं बदलता, तुमने नहीं पढ़ना, कोई और जाके किताब पढ़ लो, फिक्शन पढ़ लो, कुरान तो यही रहेगा। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कुरान की बातें सुनकर, इट्स सो हार्ड। तो याद रखिए, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है, अल्लाह हक का ऐलान करता है और अपने दीन का इजहार करता है। इसीलिए फरमाया आगे लफ्ज़ देखिए, अल्लाह ही अल्लाह के नूर को बंद करें बी अफवाह ही अपने मुँह से। ये लफ्ज़ अफवाह क्या है? देखिए, एक लफ्ज़ है फमुन, फमुन की जमा है अफवाह, और असल में वो मीम नहीं था, हाई था। ये जो अफवाह फैलती है ना, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? र्यूमर। ये क्या है? उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, मुंह दर मुंह बातें जाती हैं, इसलिए इसको अफवाह कहते हैं। ठीक है, जिसको माउथ कहते हैं ना, इस हिस्से को फमुन कहते हैं या फहुन भी कहते हैं। ज़ालिका कौलुकुम बी अफवाहिकुम, ये तो तुम्हारे मुंहों की बातें हैं। यरदूनकुम बी अफवाहिहिम, ये तो तुम्हें अपने मुंह की बातों से खुश करना चाहते हैं। और बहुत जगह ये कुरान में आपको लफ्ज़ दिखता है। अब यहाँ देखिए, अपने मुंह से जो बात निकालते हैं, मुराद ये है कि ये कुरान के नूर को बदलना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं लोगों को इस्लाम से। तो हटाने के लिए अरबी में आराजा, एराज करना, तवल्ला, सदाफा, ये तीनों लफ्ज़ मिलते हैं। एराज कहते हैं सिर्फ सामने से हट जाने या मुंह फेर लेने को, तवल्ला दोस्ताना ताल्लुकात ख़त्म करना, और सदफ़ा शिद्दत एराज। बहुत सख्त लफ्ज़ है सदफ़ा। वल्लाहु अल्लाह मुतिम्मु, मुतिम्मु में क्या लफ्ज़ है? तमाम, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, किसी ऐसी चीज़ को जिसके बाद ज़रूरत न रहे दूसरी चीज़ की। तम्मत कलिमत रब्बी का बिलहुस्ना भी आता है कुरान में। क्या पता चला? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा। सवाल लिखिए कैसे? अल्लाह अपने नूर को कैसे कमाल तक पहुंचाने वाला है? अल्लाह अपने इस दीन इस्लाम को घर घर पहुंचाएगा, अल्लाह अपनी इस किताब को कच्चे घरों में भी दिलवाएगा, और ये किताब इंसानियत की मेराज है। तो अल्लाह ताला इस किताब को, इस दीन को सारे आलम में फैलाएगा, अगरचे कुफार को ये बुरा ही लगे। और इस दीन के जो दलाइल हैं ना, वो आज भी गालिब हैं, सिर्फ हम मुसलमान कमज़ोर हैं, इसलिए ये दबा हुआ दिखता है। सारे अदियान पर ये दीन गालिब किया जाएगा। इसीलिए लफ्ज़ मुतिम्मु जो है ना, ये फ़ाइल का वजन है, इसम फ़ाइल है, मुतिम पूरा करने वाला। किसको? नूरी ही अपने नूर को, वलऊ और अगरचे, करीहा नापसंद करें, अल काफिरून कुफार, कफरा शकरा का ऑपोजिट है, छुपाना, हाइड कर। काफिर को काफिर क्यों कहते हैं? ना शुक्रा होता है, अल्लाह की नेमतों को छुपाता है। रात को भी काफिर कहते हैं, किसान को भी उस वक्त काफिर कहते हैं जब बीज ज़मीन में डालता है, जब वो बीज निकल आता है, फसल पकती है, फिर उसको ज़र्रा कहते हैं, जो सूरत फत की आखिरी आयत में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। वो बादल जो क्लाउड्स की शक्ल में सूरज को छुपा दे, उस बादल को भी काफिर कहते हैं। कौन इस अरबी ज़ुबान का मुकाबला करे? काफूर क्या होता है? मुर्दे को लगाते हैं ना काफूर, तो गिलाफ को कहते हैं, जो फल को अपने आगोश में रखे, अगर आपने नारियल कहीं लगे हैं तो झुंड के झुंड होते हैं, केलों के झुंड होते हैं, तो जो बाहर का कच्चा कच्चा छिलका है, या अगर आपने कॉर्न देखी हो तो उसके भी बाहर बहुत सारी लेयर्स हैं ना, इन छिलकों को काफूर कहते हैं। तो यहाँ क्या मुराद है? कि काफिर वो जो अल्लाह की नाफरमानी करे। अब आप देखिए कि लफ्ज़ काफिर के साथ ज़ुर्रा मैंने अभी आपको बताया, कुफार बताया, तो किसान जब बीज को ज़मीन में दफन करे तो वो काफिर, और जब बाद में उसकी निगहदाश्त करे तो ज़ुर्रा कहते हैं उसको। क्या पता चला? सूरह तौबा की आयत नंबर 32 और 33 में वही कॉम्बिनेशन था जो आपको अब सूरह सफ़ की आयत नंबर 8 और 9 में दिखता है। रेफरेंस के लिए आयतों के नंबर लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, थोड़ा सा फ़र्क है बस इन दोनों के अंदाज़ में। सूरह तौबा की आयत 32 क्या थी? युरीदूना ऐ युतफियु नूर अल्लाही बी अफवाहिहिम, इतनी बात तो सेम ही है ना। यहाँ क्या है? वल्लाहु मुतिम्मु, उधर क्या था? वया बल्ला, इनकार करता है अल्लाह, और अबाब कहते हैं शिद्दत से इनकार करना। शैतान के लिए क्या आता है? अबा वस्तकबरा, यानी अल्लाह शिद्दत से इस बात का इनकार करता है। क्या? इल्ला ये के अन युतिम्मा नूरहू, यहाँ मुतिम इसम फ़ाइल है, वहाँ फेले मुजारे, अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा। इधर क्या है? वलो करिहल काफिरून, उधर भी यही है, वलो करिहल काफिरून। अगली आयत जो 9 नंबर होगी ना, यहाँ भी बिल्कुल ऐसी ही है, सिर्फ आखिरी लफ्ज़ फ़र्क है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کیا پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہم بات کو بار بار لاتے ہیں. چند باتیں لکھی جس سے آپ انشاءاللہ باقی چیزوں کو مزید سیکھیں گے اور سمجھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو ایک سچائی بنا کر بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سچائی کو پیش کرنے والے تھے. کل کا دور تھا, آج کا ہے, اور اب دن بدن قیامت تک کا آنے والا دور, اس میں لوگ اسلام کے خلاف باتیں کریں گے. دن بدن یہ بھوکیں بھرتی جائیں گی. پہلے جا کر مسجد نبوی میں کوئی فتنہ کھڑا کرتے تھے, ہو سکتا ہے مسجد سے باہر نہ خبر ہو جب تک کوئی جا کر نہ بتائے. آج کا منہ کون سا ہے؟ سوشل میڈیا. بھوکے آج کی کیا ہیں؟ پروپیگنڈے. آج کی بھوکے کون سی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو کرنا کیا ہے. ہم ابھی تک جو پڑھیں اس کا خلاصہ کر کے اس پہ اپنے آپ کو پورا کریں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری کوششیں کس رخ کی ہیں. کان نہم بنجانم مرسوس ہونا, آج وقت کی اہم ضرورت ہے, ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کفار جمع ہو رہے ہیں, دے ہیو ٹیم ورک, دے آل ہیو دا سیم گول. اور قرآن کہتا ہے تحسبہم جمیعا و قلوبہم شتا, تم ان کو ایک سمجھتے ہو جبکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. آج جب اسلام کے خلاف لوگ سب ایک ہو گئے تو کیا مسلمانوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں خود کو؟ ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں صرف ایک نام پہ مار رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. ہمارا نام مسلمان کا نہیں اچھا لگتا, کام ہمارے کون سے مسلمانوں والے ہیں؟ یاد رکھیے دو طرح سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ آزمائشیں لاتا ہے. آپ کہتے ہیں نا بڑی آزمائشوں کا دور ہے, دو طرح سے اللہ آزمائشیں لاتا ہے. ایک اسلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے, جیسے بلال پہ آئیں احد احد کا نعرہ, مصعب بن عمیر پہ آئیں, بی بی سمیہ پہ آئیں, اور ایک آتا ہے اسلام چھوڑنے کی وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دور اول کے لوگوں پر جو آزمائشیں آتی تھیں وہ اسلام پہ جمنے کی وجہ سے آتی تھیں. حتیٰ کہ امام احمد کا دور آتا ہے, صرف دین کے ایک مسئلے پہ ان کو کوڑے مارے جاتے تھے, کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ کے اوپر وہ کوڑے مارے جاتے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا, لیکن امام احمد استقامت کا پہاڑ بنے تھے. اور یہ آزمائش مبارک ہیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے ہم حسب تم ان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین آمنوا منکم, تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, لیکن ابھی اللہ نے چھانٹی نہیں کی, تم میں سے کھرے اور کھوٹے کو لگی نہیں کیا. اور اسی طرح سے آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو ہر دور کے مخلصین اور دین پہ عمل کرنے والے, آج آپ دین پہ عمل کریں گے تو آپ کو خاندان برا کہے گا, دوستیں مذاق اڑائیں گی, بیٹیوں کے رشتے کہاں ہوں گے, میاں دوسری شادی نہ کر لیں, فلاں نہ کر لیں, یہ نہ کر لیں. تو لکھیے کان نہم بنجانم مرسوس ہونا, آج وقت کی ضرورت ہے. وجہ نمبر ایک, انکار کرنے والے اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں. کیسے؟ نمبر ایک, منفی پروپیگنڈا, میڈیا کا کردار, اینٹی اسلام چینلز, اینٹی اسلام ویب سائٹس, آرٹیکلز, اشتہارات, سائن بورڈز اور اینٹی اسلام نیوز چینلز. ہر خبر پڑھ کے لگتا ہے مسلمان انتہائی بد تہذیب اور برے لوگ ہیں. ہم جب دنیا میں ارد گرد یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اپنے اسلام سے ناراض ہونے لگتے ہیں, اور آج ہمارے بچے ناراض ہیں اسلام سے, کہتے ہیں خبردار اگر آپ نے مجھے مسلم کہا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس تھنگ. اتنا ان کو باہر سے شرمندہ کیا گیا کہ مسلمان تو ہوتے ہی ایسے ویسے ہوتے. آپ کو تھے کہ جتنے ینگسٹرس کی زبانوں پہ یہ ہے نا کہ آئی ایم ناٹ اے مسلم, دیٹ از ری ایکشن. پنجابی میں کہتے ہیں آگ جلے گی تو دھواں تو اٹھے گا نا, سیک. اگر چمنیاں نہ ہوں تو وہ بوائلرس خود ہی پھٹ جائیں. بچوں کے اندر اتنی نفرت, اتنی شدت ڈال دی گئی اپنے ہی اسلام کے خلاف कि जिस दिन वो बस्ट होते हैं तो वो कहते हैं आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई एम नॉट मुस्लिम एनी मोर. क्यों? युरीदून अली युत्फी नूर अल्लाह, ये नूर अल्लाह आपका बेटा भी है, आपकी जवान बेटी भी है, आज का एक पढ़ा लिखा मुसलमान शौहर भी है जिसको अब इस्लाम अच्छा नहीं लगता. और ये जो एनजीओस के नाम पे औरतों को सड़कों पे लाने वाले हैं, ये भी नूरुल्लाह के उस प्लान को फेल करने की कोशिश है. जिस मुमकिन तरीके से उन्होंने ये सब किया उसकी मिसालें सबको मिल रही हैं. तो आज आपके मेरे लिए ये लम्हे फिक्रिया है. अल्लाह ने इस आयत में तो ये बात करके हमें बता दिया कि उनके ये इरादे हैं, सवाल ये है कि हमारे क्या इरादे हैं, हम कहाँ खड़े हैं. हम इस आयत को पढ़कर ऐसे गुजर जाएं, सब समझ लिए, युरीदून अली युत्फी नूर अल्लाह ही बेफाहिम, कुछ नहीं होता. हमें देखिए, कोई आपके पास आकर कह दे, कोई औरत आपके शौहर को वरगला रही है, आपकी सास आपने बेटे की दूसरी शादी करने लगी है, कुछ नहीं होगा. आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, कुछ नहीं होगा, बैठे रहेंगे. हम तो ऐसे एक्टिव होंगे कि हमारी तो जान पे पड़ जाएगी. और जब इस्लाम की बात आती हूँ कहते हैं अच्छा फिर अल्लाह खुद ही करेगा. वो उन्होंने मुंह से कह दिया था फसा बनता व रब्बू का फ़कातिला, हम अमल से कहते हैं. आज के दौर में खामोश रहना जुर्म है, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना जुर्म है. आज का मुसलमान सिर्फ नमाजें पढ़कर इन फूकों को नहीं बुझा सकता. देखिए ना, फूक लगा रहे हैं वो, आग लगा रहे हैं, और आप अंदर नफिल पढ़ रहे हैं. अगर हमें रूबते हुए इस्लाम की चीखें नहीं सुनाई दे रही तो दुआ कीजिए कि दिल मुस्लिम दिल नहीं इसे ज़िंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे कोहन का जार. आज हम ठंडे, हर चीज़ में गर्म और इस्लाम में ठंडे. नमाजें टूटी टेली ढाली और एक मेहमान घर में आ जाए, हमारी दौड़ें तो कोई देखे, हमारी डेकोरेशन तो कोई देखे. एक शादी आए और फिर देखे हमारी कमर ठीक होती है, हमारी टांगे सीधी होती हैं, हमारे पास वक्त है कि नहीं है. और आप दीन की बात तो करें, एक हम अपने घर को सेट करें ना, घर बनाना. मैंने मिसाल है, 1 साल का जिहाद है कम अज़ कम, फिर उसको बनाना, फिर उसको सजाना, फिर फर्नीचर आएगा, फिर टॉयलेट पेपर तक तो हम मैचिंग लाते हैं. जो कौम इतने जिहाद जो कर रही है तो उनके पास कहाँ टाइम है. इसलिए ज़रूरत इस बात की कि हम अपनी फिक्र करें. जब आग लगाते हैं ना कोई, और कोई दूसरा उसका हाथ ना पकड़े, तो वो भी मुजरिम है. वो बोलते हैं, उन्होंने तो बोलना है, उनको तो बोलना चाहिए. वो बोलते हैं तो कभी हमें गुस्सा आता है, कभी नबी का कार्टून बना देते हैं तो हम भी जोश वोश में दो नारे लगाते हैं. आम हालात में हम ठंडे. याद रखिए कि आम हालात में इंसान बुनियादों महसूस बना रहता है, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो हम सब जुड़ जाते हैं, और जब ज़रा खुशी के दिन आते हैं हम फिर फटने लगते हैं. तो आज के दौर के लिए आज की आयत, और अब कल इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे इसका अगला रुख, जो इस सूरत का पूरा थीम है, कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलखुदा व दीन अलहक़. करना क्या, जब हक पेश किया जाए तो उसको ठुकराइए नहीं. अल्लाह की उतारी हुई किताबों को अपनी मनगढ़ंत बातों से नहीं सजाना, और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए दाई दीन बनना है. इंशाअल्लाह आयत नंबर 9 आपको बताएगी कि ग़लबा इस्लाम की नवीद आपके मेरे सामने है. इस्लाम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है. आज के दौर में हमें ऐसे लीडर्स चाहिए, ऐसे मुबल्लिगीन चाहिए जो हिम्मत बनाए. आज का बच्चा कल का इमाम. कल क़यामत के दिन अल्लाह को ये ज़रूर कहेंगे, वो जो मशहूर बात है ना, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो लोग ईंधन डालते थे आग बढ़ाओगे, तो एक परिंदा था कोई, तो वो जाकर पानी लाकर चोंच में कितना आया होगा तो उस आग में डालने लगा जो एक बड़ा अलाव था. तो किसी को उस पे आ रहा है, उसने कहा कि तेरे इस कतरे से क्या होगा. तो उसने क्या कहा था, सबको याद होना चाहिए, कहने लगी मुझे क्या, इससे आग बुझे कि ना बुझे, बस मैं तो इसलिए डाल रही हूँ कि कल क़यामत के दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में हो, लगाने वालों में नहीं. हमारी इन सारी कोशिशों से कुरान का नूर फैले ना फैले, इस्लाम का नूर बुझने से बचे ना बचे, कल अल्लाह को कह देंगे कि अल्लाह जब लोग दुनिया बनाने में थे तो हम तेरे दीन के लिए थे. आज इस सोच के साथ उठेंगे ना, पहले दुनिया मिलेगी, ये आती तब है जब आप इसको दिल से निकालते हैं. ये डक्का है, क्लॉग है. आपके सिंक में जब क्लॉग आ जाता है तो पानी नहीं जाता, सब्ज़ी के डंठल कहाँ जाएंगे. एक दफ़ा इस दुनिया के क्लॉक को फ्लश कीजिए, फिर देखिए अल्लाह आपसे कितना काम लेता है। तो जज़ाकुम अल्लाह खैर, अल्लाह ताला आफ़ियत में रखे, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर बात होगी।